السلام علیکم. آج جمعہ ہے، جون کی 2 تاریخ، پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں رواں سال انتخاب کا سال ہے، اور پی ڈی ایم حکومت کو اگلے ہفتے اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم نے 8 ماہ سے تعطل کے شکار پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی رابطہ کیا ہے، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ فنڈ کی جانب سے پروگرام بحال کرنے کی صورت میں پاکستان تمام اہداف کے حصول کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. تاہم معاشی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت ایک توسیعی بجٹ بنانے میں مصروف ہے، جو بجٹ خسارے کے اہداف سے کہیں زیادہ ہوگا. ادھر جمعرات کو اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر حیران کن طور پر بڑھ گئی، تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ کم و بیش مصنوعی ہے اور زیادہ پائیدار نہیں ہے. افغانستان کے طالبان حکومت نے اسلام آباد کو پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان مخالف عسکریت پسند گروہ تحریک طالبان پاکستان کے شدت پسندوں کو سرحدی علاقوں سے دور منتقل کرتے، تاکہ ان کی سرحد پار رسائی آسان نہ رہے. اس بات کا انکشاف پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیا. کابل کی جانب سے یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغان طالبان کی ثالثی میں پاکستان کی حکومت اور کلدم تحریک طالبان پاکستان کے مابین امن مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. انسانی حقوق کے کارکن اور وکیل جبران ناصر کے کراچی سے مبینہ اغوا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے ٹویٹر پر ایف آئی آر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جبران ناصر کا پتہ لگانے اور ان کی بحفاظت واپسی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایف آئی آر جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا کی مدیت میں درج کی گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات کو 10 سے 15 نامعلوم افراد ان کے شوہر کو اغوا کر کے لے گئے. جبران ناصر کے مبینہ اغوا پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جبران ناصر کو فوری طور پر رہا کیا جائے. سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلی پرویز خٹک نے جمعرات کی رات اسلام آباد میں ایک ریاستی ادارے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی موجودگی میں پارٹی کی صوبائی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. پارٹی کے ترجمان اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو برقرار رکھنا اور متفقہ طور پر کسی بھی دوسری جماعت کا حصہ بننا پہلی ترجیح ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی مضبوط جماعت ہے اور اس کو سیاسی دھارے سے نکالنے سے سیاسی بحران میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، لہذا حکومت اور ریاستی اداروں کو مذاکرات کی تجویز پر غور کرنا چاہیے. ان کے بقول صرف مذاکرات ہی سے سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں. پرویز خٹک کے اعلان کے چند گھنٹوں کے بعد پنجاب کے سابق وزیر اعلی سردار عثمان بستار نے بھی عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے چین سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. راہل گاندھی امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب کے ایک پروگرام میں شرکت کی ہے. اس موقع پر وائس آف امریکہ اردو کی جانب سے کشمیر سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہر بھارتی شہری کے جمہوری حقوق پر یقین رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت جموں و کشمیر میں جمہوری مکالمے کو بہتر بنانے کی حامی ہے اور اسے بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کی اقتصادی اور سیاسی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. راہل گاندھی نے کہا کہ سن 2024 کے انتخابات हैरान कुन होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत में आजादी सहाफत में कमी आई है। भारत में जमहूरियत की बुनियाद मजबूत है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अमरीकी सेनेट से कर्जों की हद में इजाफे के बिल की मंजूरी के बाद अमरीका के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया है। जुमेरात को अमरीका की सेनेट ने 36 के मुकाबले में 63 वोटों से बिल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अमरीका अपनी अदायगियां जारी रख सकेगा। सदर बाइडन ने एक बयान में कहा है कि दोनों जमातों के सेनेटर्स ने हमारी मेहनत के बाद होने वाली उस माशी पेशरफ्त का तहफ्फुज़ दिया है और अमरीका को पहली बार डिफॉल्ट होने से रोकने के लिए वोट दिया है। बिल की मंजूरी के बाद सेनेट के अक्सरियत लीडर चक शूमर ने अपनी तकरीर में बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए अमरीकी अवाम, सदर जो बाइडन और अपनी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी का शुक्रिया अदा किया है। सदर बाइडन के दस्तखतों के बाद इस बिल को कानून का दर्जा मिल जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो मुस्तकबिल में जौहरी हथियारों के कंट्रोल के फ्रेमवर्क के बारे में पेश की शराइत के बगैर रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उसका यह भी कहना है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले के जवाब में जवाबी इकदाम कर रहा है, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी हथियारों के कंट्रोल के माहदे के लिए तआवुन को मुअत्तल कर दिया था। बाइडन इंतजामिया के दो सीनियर अफसरान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवन आज जुमे को आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन से खिताब के दौरान एक नए फ्रेमवर्क की तामीर पर बातचीत के लिए बाइडन इंतजामिया की ख्वाहिश को वाज़ेह करेंगे। पुतिन ने फरवरी में ऐलान किया था कि वो वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान यूक्रेन की जंग पर जारी गहरी कशीदगी के बाइस न्यू स्टार्ट ट्रीटी की न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलों के मुआयने की दफात के साथ रूस के तआवुन को मुअत्तल कर रहा है। ताहम पुतिन का कहना था कि वो जौहरी हथियारों से मुतालिक मुआहदे की हदूद का एहतराम करेंगे। अहदेदारों का कहना है कि सलिवन इस बात पर जोर देंगे कि अगर रूस मुआहदे की तजदीद करता है तो अमरीका इस मुआहदे की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। मौजूदा मुआहदा फरवरी सन 2026 में खत्म हो रहा है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन की जंग में उस वक्त तक कोई जंगबंदी मुमकिन नहीं है जब तक कि ये एक मुनसिफाना और देरपा अमन के माहदे का हिस्सा न हो, जिसमें रूसी फौजियों का इनखिला भी शामिल है। नेटो इतिहाद के सबसे नए रुकन फिनलैंड में खिताब करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि जब तक अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर और यूक्रेन की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आजादी को बरकरार रखा जाएगा, अमरीका दीगर अक्वाम की तरफ से अमन की कोशिशों की हौसला अफजाई करेगा। उधर यूक्रेन में हुकाम का कहना है कि उसकी फौज ने जुमे को रूस की तरफ से कीव पर फायर किए जाने वाले 30 से जायद रूसी मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए हैं। हुकाम ने बताया कि मलबा गिरने से कम अज कम 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बरतानिया की वजारत दिफा ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में जुमे को अपनी खुफिया मालूमात में कहा कि रूस अब शदीद मखमसे का शिकार है कि आया वो रूस के सरहदी इलाकों में अपने दिफा को मजबूत करे या यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम करे। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जुमेरात के रोज यूक्रेन के दारकूमत कीव को निशाना बनाने वाले रूसी मिसाइल हमले में एक 9 साल बच्ची और उसकी मां समेत कम अज कम 3 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए हैं। एशिया, बहरुल काहिल, यूरोप और शिमाली अमरीका के वज़राए दिफा और दीगर सियासतदानों के साथ साथ आला फौजी अफसरान, सिफारतकार, हथियार बनाने वाले और बैन अलावामी सलामती के तजियाकार सालाना शंग्रीला डायलॉग के लिए सिंगापुर में हैं, जो प्रीमियर एशियाई दिफाई सरबराही इजलास है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बनीज जुमे की शाम इस साल का अहम खिताब कर रहे हैं। अमरीकी वजीर दिफा लाइट ऑस्टिन हफ्ते के रोज और चीन के नए वजीर दिफा ली शोंगफू इतवार को ग्रुप से खिताब करने वाले हैं। सालाना सरबराही इजलास से एक कशीदा बैन अल-अक़वामी पस मंजर में मुनाक़िद हो रहा है, जिसमें रूस का यूक्रेन पर हमला, चीन की जानिब से रूस की हिमायत और ताइवान के खिलाफ चीन के बढ़ते हुए जारहाना इकदाम शामिल हैं। सूडान के मुतहारिफ फरीकों के दरमियान दारुलहुकूमत में रात भर और जुम्मे के सुबह तक झड़पें हुई हैं, जबकि जंगबंदी को बरकरार रखने और इंसानी बहरान के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अमरीका और सऊदी अरब ने जुमेरात को जंगबंदी की बातचीत को उस वक्त मुअत्तल कर दिया जब उनकी सालिसी में की गई जंगबंदी टूट गई। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक वॉशिंगटन ने फौज और आरएसएफ से ताल्लुक रखने वाले कारोबारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और धमकी दी है कि अगर फरीकैन ने अपने मुल्क को तबाह करना जारी रखा तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। अमरीका ने ताइवान के साथ जुमेरात को एक तिजारती माहदे पर दस्तखत किए हैं। चीन इन ताल्लुकात की मुखालिफत करता है, जिसका दावा है कि जजीरा उसकी मिल्कियत है। दोनों हुकूमतों का कहना है कि 21वीं सदी की तिजारत के लिए अमरीका और ताइवान का ये इकदाम कस्टम, सरमायाकारी और दीगर जाब्तों को बेहतर बनाकर तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करेगा। चीनी हुकूमत ने वॉशिंगटन पर ताइवान की हैसियत से मुतालिक माहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है और अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह जजीरे की मुंतखब हुकूमत के साथ सरकारी राबता बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जुमे को कहा कि ईरान में मुनशियात से मुतालिक इल्जाम पर सजाए मौत पाने वाले अफराद की तादाद सन 2022 के मुकाबले में इस साल 3 गुना बढ़ गई है और खबरदार किया है कि ऐसी फांसियां शर्मनाक हद तक बढ़ गई हैं। ईरान ने गुज़श्ता सितंबर में शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक से मुतालिक मुकदमात में 7 अफराद को फांसी दी है। एहतजाजी मुहिम चलाने वालों का कहना है कि हालिया महीनों में तमाम इल्जाम, खासतौर पर मुनशियात से मुतालिक फांसियों में इजाफा हुआ है। एमनेस्टी ने कहा कि मुनशियात से मुतालिक जराइम के मुर्तकिब कम अज कम 173 अफराद को इस साल मुनज़्ज़म तरीके से गैर मुनसिफाना ट्रायल्स के बाद फांसी दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि यह तादाद गुज़श्ता साल के इस वक्त के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारजा नेलीदी पेंडोर ने कहा है कि उनका मुल्क सदर पुटिन के खिलाफ जंगी जराइम में आलमी फौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट पर अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। रूसी सदर रामाबरस अगस्त में जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई 5 बड़ी मईशतों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी कोरिया का एक ग्रुप है। उर्दून के वली अहद शहजादा हुसैन अब्दुल्लाह सानी ने सऊदी अरब में शहजादियों की सी जिंदगी गुजारने वाली एक अरबपति घराने की आला तालीम याफ्ता खातून रिजवा सैफ को अपना जीवन साथी बना लिया है। शादी की इस तकरीब को उर्दून और सारी दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया। इस तकरीब में दुनिया भर के शाही खानदानों के अफराद और दूसरी अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें अमरीका की खातून अव्वल जिल बाइटन और उनकी बेटी एशले शामिल थीं। बरतानिया के वली अहद शहजादा प्रिंस विलियम और उनकी अहलिया कैट भी इसमें शामिल हुई, जबकि अमरीका से माहौलियात के सफीर जॉन कैरी और दूसरे शुरका शादी की तकरीब में शामिल थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज एडिटर बेहचत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।